पांच हो गए ना, आठ पांच।
हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीर मनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bye. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथां नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमाओं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 30 डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ के तात्पर्य पढ़ेंगे। इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहाँ रात्रि है वहाँ वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। तात्पर्य, बंगला में एक कहावत है कि वह इतना बलवान है कि चाहे तो रात को दिन और दिन को रात कर दे। यह कहावत प्रियव्रत के शौर्य के कारण ही प्रचलित है। उनके कार्यों से यह पता चलता है कि भगवान की उपासना से वे कितने शक्तिशाली हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि जहाँ जहाँ योगेश्वर रहते हैं वहाँ वहाँ विजय धन तथा ऐश्वर्य रहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। भक्ति इतनी बलशाली होती है, जब भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो वह उसकी निजी शक्ति से नहीं वरन शक्ति के स्वामी योगेश्वर कृष्ण के अनुग्रह से होती है। उनके अनुग्रह से भक्त को ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं प्राप्त हो सकती है जिनकी बड़े से बड़े वैज्ञानिक कल्पना तक नहीं कर सकते। इस श्लोक के वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य घूमता है। आधुनिक ज्योतिर्विदों के अनुसार सूर्य एक स्थान पर स्थित है और सौर मंडल से घिरा हुआ है, किंतु यहाँ हम पाते हैं कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह अपनी नियत कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस कथन की पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है, यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्र। सूर्य भगवान की आज्ञा के अनुसार स्थिर कक्षा में घूमता है। वैदिक साहित्य के नक्षत्र विज्ञान अथवा ज्योतिर्वेद के अनुसार सूर्य 6 मास तक सुमेरु पर्वत के उत्तर में और 6 मास दक्षिण में घूमता रहता है। इस ग्रह पृथ्वी में यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि जब उत्तर में ग्रीष्म ऋतु होता है तो दक्षिण में शीत ऋतु रहती है। इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। कभी कभी आधुनिक विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य के सारे अवयवों का पता लगा लिया है, किंतु फिर भी वो प्रियव्रत के समान दूसरा सूर्य प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के समान एक तेजस्वी रथ का आविष्कार कर लिया था, किंतु उनकी इच्छा सूर्यदेव के प्रतिस्पर्धा करने की नहीं थी, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। उनका उद्देश्य अधिकाधिक भौतिक लाभ प्रदान करना था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि महाराज प्रियव्रत के तेजस्वी सूर्य की किरणें अप्रैल तथा मई के महीनों में चंद्रमा के समान सुहावनी थी, जबकि अक्टूबर तथा नवंबर के प्रातः तथा सायंकाल इस सूर्य से सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक ताप प्राप्त होता था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महाराज प्रियव्रत अत्यंत बलशाली थे और उनके कार्य चरित्र से उनका शौर्य चातुर्दिक फैल गया था। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं सभी भक्तों से याचना करता हूँ कि
वो आशीर्वाद दे ताकि मैं कुछ श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोल सकूं। तो थोड़ा हमारा विषय अलग है, कनेक्टेड है। तात्पर्य थोड़ा टेक्निकल और आगे और भी टेक्निकल होगा। तो हमारा विषय है आज का, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु से भी याचना करता हूँ कि आशीर्वाद दें ताकि मैं इस पे कुछ बोल सकूँ इस विषय पे। तो हमारा विषय है आज का अचिंत्य, इनकंसीवेबल। तो कैसे प्रियव्रत महाराज के कार्यकलाप अचिंत्य है कि हम देखते हैं कि क्या कैसे प्रियव्रत महाराज एक सूर्य के समान उनका रथ था, दूसरा सूर्य इतना तेजस्वी, और जब भी सूर्य एक दिशा में था ऑपोजिट दिशा में थे ताकि वहां पे रात ना हो। तो सबसे पहला मुझे प्रश्न आया कि फिर लोग कब सोते थे? अचिंत्य। तो इसलिए मैंने अचिंत्य टॉपिक चुना है आज का। फिर दूसरी बात, वो रथ जब घूमता था तो उसके वजह से क्या हुआ, सात सेवन आइलैंड्स और सेवन ओशंस। तो अगर वो देखेंगे उनका साइज सबका डबल है, डबल डबल ऐसा ट्रिपल, पलक्षदीप सीमंतदीप, सीमंतदीप नहीं पलक्षदीप। तो अगर उनका रथ है तो रथ के पहिया तो सेम रहेगा, तो उसके अलग अलग साइजेस कैसे हुए, ये भी अचिंत है। और फिर उसके बाद सब सारे जो ओशन ऑफ मिल्क, योगर्ट, घी, लिकर, वो सारे ओशन वो कहाँ से आए, वो भी अचिंत्य है। तो इसलिए अचिंत्य टॉपिक है हमारा। तो श्यामानंद प्रभु बोलते हैं कि भागवतम हम जब पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलता हूँ, व्हेन वी इन भागवतम देर आर थिंग्स विच वी विल अंडरस्टैंड इमीजिएटली, देर आर सम थिंग्स विच वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर सम टाइम, एंड देर आर सम थिंग्स विच विल नेवर अंडरस्टैंड। तो हमें वो अचिंत्य कैटेगरी में डाल देना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे बुद्धि के परे है। तो आधुनिक मानव को क्या चाहिए कि सब कुछ मुझे समझ में आना चाहिए तो ही मैं मानूंगा। उनके डिक्शनरी में अचिंत्य शब्द नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कूप मंडूक न्याय, कैसा वो छोटा सा मंडूक बेडूक वो एक कूप में रहता है और उसको लगता है कि यही सब कुछ है। तो वैसे आजकल के साइंटिस्ट हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बुद्धि के परे हैं। और हम देखते हैं कि पूरा ये फिफ्थ कैंटो में जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है तो वो काफ़ी अचिंत्य है, समझ में नहीं आ सकता काफ़ी सारी चीज़ें। तो चेतन चरण प्रभु ने इस पर थोड़ा सा क्लास दिया था, उसमें से मैंने कुछ नोट्स बनाए। तो प्रभु जी बोल रहे थे ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन। सो ह्यूमिलिटी मीन्स एक्सेप्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियलिटी, मीन्स जो वास्तविकता की जो जटिलता है वो समझना, वो स्वीकार करना, वही नम्रता है। यानी क्या कि जो रियलिटी है वो वास्तविकता काफी जटिल है, और नम्रता क्या है कि मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो नम्रता है। तो एक्सेप्टिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियलिटी इज ह्यूमिलिटी। तो जो मॉडर्न मैन है उसका जो ब्रेन का जो वेट है वो सिर्फ 1.5 किलो, 1.5 किलो। तो उससे कितनी सारी चीजें समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने, एक्चुअली बलराम शक्ति प्रभु बता रहे थे कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक लिस्ट दिया है पूरा कि कौन सी चीजें शास्त्र में अचिंत्य है, वो हमें पूरे समझ में नहीं आएगी। तो कभी कभी क्योंकि हम कुछ चीज समझ में नहीं आई तो अचिंत्य। तो गौराम गुरु बोले थे अचिंत्य का डेफिनेशन क्या है, अचिंत्य मीन्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अचिंत्य। तो ऐसा नहीं है। अचिंत्य वो भक्ति विनोद ठाकुर हैज गिवन सम लिस्ट। तो ये सारी अचिंत्य चीजें हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं अचिंत्य जिसपे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, तो बलराम शक्ति प्रभु बता रहे थे कि एक चीज उसमें से क्या है, जीवास फॉल डाउन, वो चीज पे डिस्कशन, उससे अनर्थ ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे भक्तिवान ठाकुर कहे थे। तो लेकिन इस पे डिस्कशन कर सकते, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स जो अचिंत है, लेकिन उस पे हम डिस्कशन कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं हम। तो अचिंत्य के लिए क्या है सॉल्यूशन, कि जस्ट एक्सेप्ट शब्द प्रमाण। जो शब्द प्रमाण है, जो बताया है शास्त्रों में, उसको जस्ट एज इट इज एक्सेप्ट करो। तो राधिका वल्लभ प्रभु ने इस प्रमाण के ऊपर एक बढ़िया लेक्चर दिया था, उसमें बता रहे थे कि कैसे तीन प्रमाण जो है, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, जैसे तीन टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यायालय। तो एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा है, अनुमान प्रमाण हाई कोर्ट जैसा, और शब्द प्रमाण जो है सुप्रीम कोर्ट जैसा। तो जो भी प्रत्यक्ष और अनुमान से हम समझते हैं, वो शब्द के अनुसार होना चाहिए, और जो शब्द है वो नेसेसरी नहीं कि प्रत्यक्ष और अनुमान के अनुसार होना चाहिए। इट कैन ओवर रूल प्रत्यक्ष एंड शब्द। तो सुप्रीम कोर्ट समटाइम्स कैन ओवर रूल हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वैसे शब्द प्रमाण एक सुप्रीम कोर्ट जैसे है, उसका डिसीजन जो है फाइनल है, और हमें जस्ट एक्सेप्ट करना है। तो लॉजिक, प्रभु जी बता रहे थे कि लॉजिक शुड बी यूज एज अ मिनिस्टर एंड नॉट एज अ मास्टर। लॉजिक कैन बी एज अ मिनिस्टर बट नॉट एज अ मास्टर। मास्टर कैन बी ओनली शब्द प्रमाण। तो जीव गोस्वामी ने जैसे 10 प्रकार के प्रमाण बताए, तो उसमें से एक प्रमाण जो है वो शब्द तो है, और दूसरा है वैदुष्य प्रत्यक्ष। तो ये वैदुष्य प्रत्यक्ष जो है वो क्या है, कि जो शुद्ध भक्तों का प्रत्यक्ष है उसे कहते हैं वैदुष्य प्रत्यक्ष। तो ये शुद्ध भक्तों का जो प्रत्यक्ष है वो साधक के लिए शब्द होता है। तो उदाहरण दे रहे थे कि कैसे जो वादिराज तीर्थ, जिन्होंने भूगोल वर्णनम लिखा है, जिसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स और डिटेल में बताया है, तो वादिराज तीर्थ साक्षात वो एक वायुदेव के एक्सपांशन है। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री गौर निताय की, जय। तो वादिराज तीर्थ जो है वो वायुदेव के एक एक्सपांशन है, और उन्होंने खुद सब जाके देखा है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, वायु कहीं पर भी जा सकते, और फिर उन्होंने लिखा है भूगोल वर्णनम। तो पावनेश्वर प्रभु ने वो काफी उसमें से लिया है, भूगोल वर्णनम में से, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। तो जो शुद्ध भक्तों का क्या प्रत्यक्ष है, वो साधकों का क्या है, शब्द है, तो उसे वैदुष्य प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये भागवतम में भी जो स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है, जो व्यासदेव ने साक्षात वो देखा है और वही उन्होंने दिया है, तो हमें जस्ट उसको क्या है, एक्सेप्ट करना है, समझ में आए नहीं आए। सो दैट इज शब्द वी एक्सेप्ट। अचिंत्य के लिए क्या है, वी जस्ट एक्सेप्ट इट। तो जब मैं मुंबई में था, जॉब करता था, तो तभी चैतन्य चरण प्रभु और उनका टीम, यानी दानवीर महाराज और उनका जो टीम था, वो ये वीडियो बना रहे थे वैदिक कॉस्मोलॉजी का। तो चैतन्य चरण प्रभु भी थे उस टीम में। तो काफ़ी बार चैतन्य चरण प्रभु मुझे पूछते थे, मैं कंपनी में क्योंकि नेट वगैरह एक्सेस था, तो इसका कुछ हेल्प, प्रोजेक्ट वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में कुछ हेल्प के बारे में पूछते थे, तो मैं नेट पे सर्च करके उनको भेजता था। तो एक बार उन्होंने पूछा था कि शास्त्र में ऐसा है कि जो सूरज को जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी रोशनी देने की, तो वो उसके जो गर्भ में पानी है, काफ़ी सारा जलाशय, उससे मिलती है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नेट पे ढूंढो कि मॉडर्न थेरीज कौन सा मैच होता है कि इसके साथ। तो मैं पूरा दिन ढूंढ रहा था कोई मॉडर्न थेरी मैच होता है कि इससे, तो एक भी थेरी मैच नहीं हो रहा, सब हाइड्रोजन फिशन फ्यूजन वो कुछ था। लेकिन ऐसा एक भी थेरी नहीं था कि सूर्य के अंदर जो पानी है उससे उनको ऊर्जा मिलती है। तो ऐसा कई तो रेफरेंस था शास्त्र में, तो ऐसे काफ़ी सारे वो प्रभु जी भेजते थे। तो एक बार उनका जो टीम था जुहू मंदिर में आया था, पूरा दानवीर महाराज उनके शिष्य चैतन्य चरण प्रभु, तो चैतन्य चरण प्रभु मुझे बुलाया था उधर जुहू मंदिर में कि आप भी आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं गया था और मेरे पास कुछ महाप्रसाद था, तो मैंने फिर प्रभु जी को मिला, उनको प्रसाद दिया। तो वो बोले आपको महाराज से मिलना है क्या? बोला कि मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ पता नहीं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। नहीं, आप ये प्रसाद महाराज को भी दो डायरेक्ट। तो फिर वो मुझे लेके गए महाराज के रूम में। वो दानवीर महाराज और उनके काफ़ी सारे शिष्य बैठे थे और उनका डिस्कशन चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, यही वो सेवन ओशंस एंड सेवन आइलैंड्स। तो उनके एक शिष्य उनको महाराज को पूछ रहे थे कि ये जो ओशन ऑफ योगर्ट, दही हमारे इधर इतना थोड़ा बहुत मिलता है हमको दही इस दुनिया में पैसे देके खर्च करके, तो ऐसा दही का उधर सागर है। आश्चर्य से पूछ रहे थे उनको, ऐसा दही का उधर इतना बड़ा सागर है क्या? तो महाराज बोले दैट इज ऑफ बेटर क्वालिटी। ऐसे बोले वो इससे बेहतर क्वालिटी का है, ये ऐसा नहीं थर्ड क्लास इधर का। तो मैं बोला महाराज को महाप्रसाद दिया, मैं निकल के आया उधर से। महाप्रसाद इज ऑफ बेटर क्वालिटी है ना। तो चैतन्य चरण बता रहे थे कि कैसे उन्होंने ये भागवतम से पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स नहीं मिलता है, मिस भागवतम पढ़ के आप यूनिवर्स का स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकते। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे 10,000 डिफरेंट रेफरेंसेस लिए थे वो वीडियो बनाने के लिए, आपने देखा भी होगा वो वीडियो दानवीर महाराज का। तो प्रभु जी एक एनालॉजी दे रहे थे कि बिल्डिंग ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर यूजिंग श्रीमद् भागवतम इज लाइक ड्रॉइंग अ मैप ऑफ अमेरिका यूजिंग प्रभुपाद लीलामृत। तो कैसे लीलामृत में हम देखें कि प्रभुपाद पहले न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क में कुछ समय रहे, फिर बाद में सैन फ्रांसिस्को गए, फिर बाद में लॉस एंजलिस गए, फिर इधर। तो वो डिस्क्रिप्शन से अगर कोई सोचता है कि यूएस का मैप निकाले तो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है उसमें, दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑल्सो एंड दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। तो लीलामृत का पर्पज ये नहीं कि यूएस का मैप बनाओ, उसका पर्पज अलग है, प्रभुपाद का लीला का वर्णन है उसमें। सो वैसे ही भागवतम का पर्पज ये नहीं है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर बनाओ, द पर्पज ऑफ भागवतम इज टू शो हाउ धर्मा इज फॉलोड एवरीवेयर। तो इसलिए भागवतम में जो इन्फॉर्मेशन है उससे पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते यूनिवर्स का, तो इसलिए उन्होंने काफी सारे रेफरेंस लिए थे वो बता रहे थे। तो जो अचिंत्य चीजें हैं, अगर सोचेंगे कि ये सब अचिंत्य है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स और ये काल्पनिक है, कोई बोलेगा, लेकिन इस भौतिक जगत में भी काफी सारे अचिंत्य चीजें हैं, इस पृथ्वी पे भी अगर हम देखेंगे। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया उसका, कैसे कुछ इस पृथ्वी पे भी ऐसी चीजें हैं कि हमको आज तक पता नहीं उसका उत्तर क्या है। तो जैसे भक्ति रसामृत महाराज ये उदाहरण दे रहे थे कि कैसे चकोर पक्षी होता है, तो ये चकोर पक्षी बड़ा अजीब पक्षी, तो वो रात में एक्टिव रहता है, तो जब ही चांद का उगम होता है तो वो चांद की तरफ एक टक देखते रहता है विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको वो चांद से एनर्जी मिलता है उसके मून रेस से, और उसको बाकी कुछ खाना नहीं पड़ता, खाने पीने की जरूरत नहीं, वो मून से ही उसको पूरा एनर्जी, और वो ऐसा देखते रहता है जैसे चांद ऐसे ऊपर जाता है, वो उसकी तरफ ही देखते रहता है, और 90 डिग्री में रहता है उसका 90 डिग्री, फिर 100 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री तक वो ऐसा उसका देख जाता है, कंटिन्यूसली लुक्स, उसका पोजीशन भी चेंज नहीं करता, वो इतना उसको आकर्षण रहता है। और जब मून सेट होता है तो फिर वो सेट हो जाता है। तो इतना उसको अट्रैक्शन है, एंड उससे ही उसको उसका पूरा पोषण होता है चांद के किरणों से, अचिंत है। फिर जैसे भागवतम में ये भी उदाहरण आता है, जैसे मछली और कछुआ वो अंडे को कैसे हैचिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंडे अंडे को पोषण कैसे करते हैं। तो जो मछली होती है वो देख के पोषण करती है, और जो कछुआ होता है वो सोच के मेडिटेशन से, ये भी अचिंद है। तो इस भौतिक जगत में भी, इस भौतिक यानी पृथ्वी पे भी, और ऐसे भागवत में वर्ष आता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भावो सरो रुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो इसके परपट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे, यानी भगवान जो कानों से अंदर जाते हैं साउंड वाइब्रेशन से, वो हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, जस्ट लाइक सलिलस्य यथा शरत, यानी शरद ऋतु में, ऑटम सीजन में जैसा पानी जो बूंद पड़ती है वो जो नीचे का पानी है उसको शुद्ध करता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे रेनी सीजन में जो बारिश होता है उससे वो पानी क्या होता है, मड़ी हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन वही बारिश जब शरद ऋतु में गिरता है तो उस पानी की बूंदों से जो नीचे का जलाशय है वो शुद्ध होता है। अभी कैसे, वो बारिश तो सेम है, बारिश का पानी जो रेनी सीजन में गिर रहा है उसमें मड़ी होता है, और जो ऑटम सीजन में 2 महीने के बाद इमीडिएटली उससे वो शुद्ध होता है, मडी वाटर बिकम्स प्योर, इट इज अचिंद। फिर एक बार मैं कविचंद्र महाराज को मिलने गया था, तो हमने सुना है कविचंद्र महाराज का कैसा डाइट है, जूस लेते बस और कुछ नहीं। तो मैंने महाराज को पूछा था, महाराज हाउ यू नो मैनेज विथ ओनली जूस होल डे, यू नो यू जस्ट टेक जूस दैट्स ऑल। महाराज बोले दैट्स नॉट डिफिकल्ट, देर आर पीपल हु लिव ओनली ऑन एयर। सच में, यू सी ऑन इंटरनेट, यू पुट ब्रीद एरियंस, यू सी पीपल हु आर देयर। मैंने देखा फिर इंटरनेट पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हवा पे जीते आज भी, जो कुछ खाते नहीं, वो सिर्फ जो अन्नमय का जो प्राण है वो लेते हैं बस, और बाकी की जरूरत नहीं। तो कितना अच्छा है ना, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं। अरे ब्रह्मचारी को तो, और जैसे BTG में आया था आर्टिकल प्रहलाद जानी का, तो कैसे वो, उन्होंने 60 साल से कुछ खाया नहीं, खाया पिया नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं, वो भी अचिंत है। तो हम देखते कि इधर भी कुछ अचिंत चीजें हैं। और क्या है अचिंत्य, जैसे राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे, कैसे एक छोटा सा पक्षी है, बी हमिंग बर्ड, इतना ही छोटा सा होता है, तो वो पक्षी इतना जोर से वो उसके विंग्स पंखी फ्लैप करता है 100 times in a second, और वो इतना माइग्रेशन करता है, कई सारे किलोमीटर, हजारों किलोमीटर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे जाता है। तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने ढूंढा कि इतना छोटा पक्षी है उसको इतना एनर्जी लगेगा 100 times फ्लैप एक सेकंड में, इतना लॉन्ग जर्नी के लिए कितना बार फ्लैप करना पड़ेगा, तो इतने छोटे पक्षी में इतना एनर्जी हो ही नहीं सकता। उनके साइंटिस्ट का कंक्लूजन था कि ऐसा पक्षी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा पक्षी है और वो उड़ता भी है। स्मॉल बर्ड हैज डिफीटेड द साइंटिस्ट। तो कैसे अचिंत है उनके लिए, उन्होंने छोड़ दिया बाद में। तो ऐसे काफी सारे चीजें अचिंत है, जैसे चंद्र है तो उसके प्रभाव से मन पे प्रभाव होता है उनकी, उसके किरणों से, इसलिए तो इंग्लिश में वर्ड है लुनेटिक, कोई पागल हो जाता है कभी अमावस्या पे या जब चांद की किरणों से, तो वो भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसे होता है ये। और चैतन्य चंद्र ये बता रहे थे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो आज जो है, जैसे रसराज प्रभु आके थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स बता दे, तो वो भी अचिंत है क्योंकि आज तक किसी को समझ में नहीं आया क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बट द प्रिंसिपल इज देयर एंड थिंग्स आर वर्किंग क्वांटम मैकेनिक्स। शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, चैतन्य चंद्र प्रभु ने बताया कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कंसेप्ट है कि उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कि उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बार एक ऐसा छोटा सा एक फोटॉन छोड़ा, ऐसा फोटॉन फ्रॉम लाइट सोर्स एक फोटॉन छोड़ के एक स्क्रीन रखा, और स्क्रीन पे वो फोटॉन जाता है और एक पैटर्न तैयार होता है। तो उन्होंने दो बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार एक व्यक्ति कोई तो उसको देखता है फोटोन को जाते हुए और वो स्क्रीन पे उसका एक पैटर्न तैयार होता है। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया कि कोई नहीं देखता उसको, नोबडी ऑब्जर्व, देयर इज नो ऑब्जर्वर, और फिर फोटोन छोड़ते हैं और पैटर्न, तो दोनों बार पैटर्न अलग होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट कोई देखता है तो उसका पैटर्न अलग है, एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो उसका पैटर्न अलग है। तो ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट है तो कोई देखे नहीं देखे, एक्सपेरिमेंट्स गिव शुड गिव सेम रिजल्ट। तो वो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी जैसे रसराज गुरु बोलते हैं ना कि कुछ आप देख रहे हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में, अगर आप नहीं देख रहे तो वेव फॉर्म में। सो दैट इज एज अचिंत्य। तो किसी को समझ में नहीं आया कि आप कोई माइक देख रहे हैं तो ये है अभी, आप नहीं देख रहे तो वो नहीं है ऐसा। तो इसीलिए वो एक साइंटिस्ट ने कहा, इफ यू आर नॉट सफिशियंटली सरप्राइज बाय क्वांटम मैकेनिक्स, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। तो इतना ही थोड़ा पता है मुझे उसके बारे में, वो अचिंत्य है। और जो एरोप्लेन जो उड़ता है हवा में, तो अभी उसके बारे में चार थेरीज हैं कि कैसे उड़ता है। तो उस पर एक मत नहीं है कि कौन सा थेरी बराबर है। तो चार चार थेरीज है कि वो एरोप्लेन उड़ता कैसे, लेकिन वो उड़ता है और हम उसमें उड़ते भी हैं। लेकिन साइंटिस्ट को पता नहीं अब तक वो कौन सा थेरी है एग्जैक्ट चार थेरी में से, वो भी अचिंत्य। तो ऐसे कितने सारे अचिंत्य चीजें हैं इस जगत में। तो ऐसे अचिंत्य चीजें जो बाहर जो भूमंडल है उसमें क्यों नहीं हो सकते, और फिर आध्यात्मिक जगत में तो क्यों नहीं। तो भगवान का नाम एक क्या है, कृष्ण का अधोक्षज। अधोक्षज यानी अक्षज यानी इंद्रिय, और इंद्रियों से जो परे है वो है अधोक्षज। तो राधा गोविंद महाराज और एक उसका मीनिंग बोलते हैं कि अधोक्षज अक्षज अक्षज, यानी अ से जो अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं संस्कृत में और लास्ट वाला क्ष है, अ और क्ष। तो अ और क्ष के बीच में जिसका भी जन्म होता है यानी जो भी वर्ड्स है उसके भी परे है भगवान। तो उसके अ और क्ष के बीच में जो भी वर्ड्स है उससे उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो है अधोक्षज भगवान। तो ऐसे भगवान भी अचिंत्य है हमारे लिए। तो इस भौतिक जगत में अचिंत्य चीजें है इस पृथ्वी पे, और जो भूमंडल और बाहर का जो जगत है उसमें भी अचिंत्य है जो सूक्ष्म, और जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भी काफी सारे अचिंत्य चीजें हैं। तो ये अचिंत्य चीज हमको मानना चाहिए कि हमको कुछ चीजें हैं जो हमारे बुद्धि के परे है। तो शुद्ध भक्त जो है उनके भी कार्यकलाप कुछ अचिंत्य होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन टेम्पल में गए थे, तो उधर जब श्रील प्रभुपाद गए तो उनका सबसे पहले उन्होंने अराइवल एड्रेस रखा था मंदिर में। तो श्रील प्रभुपाद आए, व्यासासन पे बैठे और कई सारे भक्त वहां पे जमा हुए थे। तो ये लीला राधा कुंड प्रभु बताते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल राधा कुंड प्रभु। तो उस समय उधर जो काफी ये था ह्यूमिडिटी, तो जो सब मृदंग थे, हमें पता है कैसे रेनी सीजन में क्या होता है उसका डब डब बजता है, बजता नहीं ठीक से, उसको इतना हीट दे के उसको ये करना पड़ता है। तो ऐसे सारे मृदंग वैसे हो गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि मृदंग दे दो मुझे, अभी लेक्चर के पहले कीर्तन करना है। तो एक मृदंग दिया, ऐसा डब 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 पूरा आवाज आ रहा था उसका, सब भक्त बोल रहे अभी क्या होगा। तो प्रभुपाद ने सिर्फ उसको ऐसे तीन बार टैप किया, टिंग टिंग, वो एकदम ठीक हो गए और प्रभुपाद ने एकदम बढ़िया बजाया उसको। राधा कुंड प्रभु थे एकदम सामने, फर्स्ट मिरेकल, तीन मिरेकल बताते हो इसमें। तो आश्चर्यजनक है, तो अचिंत्य शुद्ध भक्त के कार्यकलाप। तो फिर कीर्तन हो गया, लेक्चर हो गया, प्रवचन हो गया, फिर बाद में आरती का समय था। फिर शिला प्रभुपाद खुद आरती करना चाहते थे, तो प्रभुपाद गए फिर आरती करने के लिए, और कीर्तन चल रहा था जोरों से, और राधा कुंड प्रभु जो थे वो प्रभुपाद को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि इतना भीड़ था और प्रभुपाद आरती कर रहे थे ऐसे एकदम, पता नहीं उधर अल्टर कैसा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं प्रभुपाद को बचा रहा था एकदम, है ना, मैं बहुत नजदीक था प्रभुपाद के। तो आरती कर रहे थे प्रभुपाद, और फिर सब एक एक आइटम्स ऑफर हो गए और फिर आर्गिया आर्गिया जो पानी का उसका समय प्रभुपाद ने ऑफर किया आर्गिया ऐसे और फिर पानी डालना था तो उधर बाउल ही नहीं था, बाउल रखना भूल गए पुजारी। तो प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद ने ऐसे कहा आई नीड अ बाउल सब भक्तों को लोग हरी बोल सब हरी बोल इतना आवाज बोले आई नीड अ बॉल सो हरी बॉल सब जोर से। अरे राधा कुंड प्रभु को समझ रहा था क्या हो रहा है लेकिन वो उधर से हट भी नहीं सकते। तो वो प्रभुपाद ने तीन बार पूछा आई नीड अ बॉल और ये जोर से हरी बोल कर रहे सब लोग। प्रभुपाद ने सोचा ये हिप्पी लोग। तो प्रभुपाद ने क्या किया आश्चर्यजनक, जो तुलसी महारानी जैसे हमारे इधर तुलसी महारानी चार पाँच पाँच फीट तो रहेंगे एटलीस्ट, तो प्रभुपाद ने वो आर्गे का वाटर ऐसा उसको थ्रो किया कि राधाकुंड प्रभु बताते कि वो ऐसा पानी का एक परफेक्ट स्ट्रीम में एक सर्कल एम्बुलेट किया तुलसी महारानी को पानी ने और फिर उसके रूट में जाके गिरा। एंड ही सेड आई सॉ विथ माई आईज आई वॉज सो नियर एंड प्रभुपाद जस्ट डिन डू इट फॉर वन टाइम। अभी आर्गे में पता है एक बार करके फिर से डालना होता है, दूसरी बार करके फिर से डालना है, तो हर बार प्रभुपाद पानी एकदम जाके ऐसा सर्कल करके एक बूंद भी नीचे नहीं गिरता था एवरी टाइम, सेकेंड मिरेकल है ना। और फिर आर्गे वगैरह हो गया सब हो गया और फिर अभी लास्ट में आरती वगैरह हो गया और फिर शंख बजाना था, तो उधर का शंख ऐसे थर्ड क्लास था अपने इधर अच्छा है शंख कि उसको होल भी नहीं था, मीन्स वो ऐसे ही टाइम पास के लिए रखा था शो के लिए उस समय, अभी हमें पता है अभी तो चीजें बदल गई है लेकिन वो ऐसा रखा था ऐसे। तो राधाकुंड प्रभु बता दे कि प्रभुपाद टुक दैट शंख एंड ही सेड आई वाज सो क्लोज टू प्रभुपाद आई कुड सी प्रभुपाद डिडंट ब्रीथ। हम शंख बजाते ऐसा करके बजाना होता है ना, प्रभुपाद डिडंट ब्रीथ टेक डीप ब्रीथ, प्रभुपाद जस्ट तीन बार एकदम परफेक्टली प्रभुपाद ब्लू दैट शंख। Everybody was surprised, you know? This was the third miracle. तो ऐसे तीन मिराकल, फिर राधा कुंड प्रभु को एकदम विश्वास हो गया प्रभुपाद इज रियली प्योर डिवोटी फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। saying before I was not convinced, but after these three miracles I saw. तो शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप भी अचिंत्य होते हैं। और ये जो वर्ष आता है श्रीमद्भागवत में, न जन्मनूनम महतो न सौभगम न वान न बुद्धि न कृतिस्तोष हेतु तैर्यद विशिष्टा न पिनो वनौकसास चकार सखे बत लक्ष्मणाग्रज। तो ये रामायण का इसमें इंसिडेंस आता है, तो ये शिक्षाष्टम प्रभु का लेक्चर सुन रहा था मैं कि कैसे जो रामायण का युद्ध है वो भी अचिंत है। तो उसके पहले महाराज बता रहे थे कि कैसे जब यूएस और तालिबान का युद्ध हुआ था, मीन्स वो हमको पता है ओसामा बिन लादेन ने वो अटैक किया था, फिर यूएस ने उनका मिलिट्री भेज के तालिबान को नष्ट करने का निश्चय किया था। तो तभी महाराज बता रहे कि यूएस हैज सच मिलिट्री फोर्स विच इज टॉप इन द होल वर्ल्ड, सो सोफेस्टिकेटेड, और तालिबान में क्या है यानी उनके पास वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके वो सब रस्टेड गन्स, महाराज बोलते दे हैड ऑल, और उनके पास क्या, दे आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ यूएस आर्मी। तो जब दे व्हेन यूएस अटैक्ड और जो ओसामा बिन लादेन को कैसा उन्होंने मारा, तो इट वाज सो स्विफ्ट फॉर देम, उनके लिए ऐसा चुटकी का काम था, तालिबान दे वर जस्ट दे कुडंट डू एनीथिंग। तो महाराज बता रहे थे कि रामायण में ऐसा था कि तालिबान इज कंपेयर टू द वानरज एंड द यूएस मिलिट्री इज कंपेयर टू रावणज मिलिट्री। तो उनके पास ऐसे सोफेस्टिकेटेड वेपन्स थे और वानरों के पास कुछ नहीं था। तो ये शिक्षाष्टम गुरु का लेक्चर है, उसमें बता रहे थे कि कैसे किसी भी देश का सबसे ज्यादा बजट जो होता है वो डिफेंस में लगता है, मैक्सिमम पैसा खर्च होता है डिफेंस में, लेकिन लॉर्ड राम्स आर्मी हैज जीरो बजट फॉर डिफेंस। तो तो वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे वो तो ब्रिज कैसे बांधा, उधर से बताते हैं। तो जो ब्रिज उन्होंने जो बांधा था जो समंदर के ऊपर, तो वो 5 दिन में बांधा और उसका 800 माइल्स लॉन्ग और 80 माइल्स विड्थ थी, इतना सिर्फ 5 दिन में। हर एक दिन कितना योजन वो भी है बताया। तो उसका शेप जो था वो ऐसा नहीं था स्ट्रेट, उसका शेप था जेड शेप था, क्योंकि इंजीनियर नील ने बोला था कि कैसे डायरेक्ट जो वेव्स होते हैं अगर सीधा बनाएंगे तो वो वेव से वो टूट जाएगा ब्रिज, तो उसको जेड के आकार से बनाना चाहिए ताकि टेंशन विल बी डिफ्यूज्ड। तो जेड शेप का आकार बनाया था। और उसकी खासियत, दूसरी खासियत क्या थी कि सिर्फ उस पर वानर ही चल सकते, कोई राक्षस नहीं जा सकता उस पर। अगर वो राक्षस पहले ही आ गए तो राक्षस आ गए तो वो डूब जाएगा, राक्षस नहीं आ सकते उसके ऊपर। और तीसरी खासियत थी कि अगर उसको बाद में एंड में उसको डिस्ट्रॉय करना है तो उन्होंने ऐसे वो केमिकल्स वगैरह यूज किए थे, मीन्स वो चूना वगैरह। तो भगवान राम के बाण में एक ऐसा बाण था जो अगर उस पर मारा तो उसका केमिकल रिएक्शन होके वो पूरा ब्रिज डूब जाएगा। तो प्रभु रामचंद्र के पास ही एक बाण था जिससे वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ऐसे तीन खासियत बताया उसके ब्रिज की। फिर ऑफ कोर्स ब्रिज बनाते टाइम भी एक सुंदर बताते हो कि कैसे जब हनुमान इतने बड़े बड़े पर्वत लेके आके समंदर में डालते थे तो कई सारे जगह पे गजेंद्र लीला होती थी। गजेंद्र लीला यानी जो पर्वत में कई सारे हाथी भी थे ना, तो हनुमान थोड़ी चलो हाथी हो बाजू को हटो मैं अभी पर्वत उखाड़ने जा, ऐसे उखाड़ देते हाथी को साथ। और जब डालते थे तो हाथी और जो मगरमच्छ नीचे पानी में वो उनका लीला चलता था, वो खींच रहा है उसको वो ऊपर खींच रहा है। तो ऐसे कई जगह पे गजेंद्र लीला होते थे ऐसे बोल रहे हैं वो ब्रिज के ऊपर। और जब ब्रिज बांध देते हैं फिर बाद में जब उस पार जाते हैं सब वानर, इतने सारे वानर का जो समंदर है और एक समंदर उनका, जब उस पार जाते हैं समंदर के तो तभी एक बार सुग्रीव को इंस्पिरेशन मिलता है और वो एक जोर से छलांग लगा के रावण के कमरे में पहुंच जाता है डायरेक्ट। रावण तब सोया हुआ रहता है तो रावण को उठा के उसको 2-4 थप्पड़ मारता है सुग्रीव और उसके मुंह के ऊपर थूक देता है और फिर से रिटर्न जंप मार के आता है। तो प्रभु रामचंद्र को पता चलता है अरे क्या किया सुग्रीव तुमने, तो तुमको कुछ हो जाता तो रावण पकड़ लेता तुमको, ये अचानक तुमको कैसे स्फूर्ति आ गई है? तो सुग्रीव बोलता है कि मुझे थूकने के लिए जगह चाहिए था। अरे शिक्षाश्रम गुरु का लेक्चर है। तो फिर आगे क्या होता है तो कैसे ये लोग, इनके पास 0 बजट यानी वेपन्स क्या है उनके पास, कुछ पत्थर वीट वगैरह मिल गया या पेड़ वगैरह उठा के मारने का बस। तो जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इंद्रजीत आया, तो जब इंद्रजीत आया और फिर अंगद था सामने, तो अंगद और इंद्रजीत में युद्ध शुरू हुआ। अंगद के पास कुछ भी नहीं और इंद्रजीत के पास इतने सारे शस्त्र थे, लेकिन अंगद ने बिना कुछ शस्त्र के इंद्रजीत को पकड़ के घुसा, ये वो लात वगैरह मार के उसको बेहोश कर दिया। इंद्रजीत उधर से भाग गया बाद में विदाउट एनी वेपन। बाद में रावण भेजता है धूम रक्षक को भेजता है, बड़ा एकदम हट्टा कट्टा राक्षस होता है, वो आता है तो हनुमान क्या करते हैं उसको जाके गले लग जाते और उसको इतना टाइट एम्ब्रेस देते हैं कि उधर ही मर जाता है, एम्ब्रेस से ही मार देते हैं धूम रक्षक को, कुछ है ही नहीं ना। क्या करेंगे। और सबसे कॉमेडी है प्रहस्त जो बड़ा योद्धा होता है, रावण बोलता है तुम जाओ भी, तो लास्ट में आएगा रावण, प्रहस्त को भेजता है। प्रहस्त एकदम शक्तिशाली महारथी अतिरथी, वो आके एक मंत्र बोल के एक पावरफुल बाण निकालता है। और उधर रहता है नील, नील जो सिविल इंजीनियर, तो नील सामने है और ऐसा वो मंत्र के साथ वो बाण छोड़ दे, इतने तेजी से वो बाण आता है, अभी नील के पास कुछ नहीं है कुछ नील क्या करता है, वो इतना तेजी से बाण आ रहा है उसको ही पकड़ लेता है हाथ से और वो बाण लेके प्रहस्त के पीछे लगता है वो प्रहस्त भाग रहा है आगे आगे, नील उसके पीछे पीछे वो बाण लेके, और उसको पकड़ के उसी बाण से मार देता है तो कुछ है ही जीरो बजट है तो ये अचिंत्य लीला है। और फिर जब रावण आता है उधर, तो हनुमान और रावण का भी युद्ध बताए, हनुमान के पास कुछ नहीं, रावण जब आके उन पे अटैक करता है तो हनुमान नजदीक जाके उसको झापड़ मारता है चार पांच, ऐसे जोर से दे धनाधन झापड़ मारता है, वो झापड़ से वो बेहोश गिर जाता है रावण, और उसका सारथी तुरंत उसको लेके जाता है भाग के। और फिर एक हाँ, फिर रावण बाद में फिर से नेक्स्ट डे आता है तो फिर उसका नील के साथ फिर से युद्ध होता है, तो रावण एक अग्नि अस्त्र छोड़ता है, अग्नि अस्त्र मंत्र के साथ, वो अग्नि अस्त्र आके इतना जोर से तेजी से आता है और नील के सामने आके गिर जाता है उधर ही। क्यों? वो रावण आश्चर्यचकित होता है, नील बोलता है ये अग्नि अस्त्र, मैं अग्निपुत्र हूं, ये मेरे पिताजी वो क्या करेंगे दूसरा कुछ ढूंढो फिर रावण ओके फिर क्या होता है, तो जब ही दिन के एंड में जो रावण है बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति, वो क्या करता था, जो भी राक्षस जो मरते थे वो एंड में दिन के, वो बोलता था इन सभी राक्षसों को समंदर में डाल दो इनका शरीर, क्योंकि फिर क्या है ये ऑपोजिट पार्टी को नहीं तो इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे इतने लोगों को मारा है। लेकिन प्रभु रामचंद्र क्या करते थे, जो भी लोग मरे हैं या घायल है उनके पार्टी के, तो उनको फिर से जीवन दान देते थे, उनको जीवित करते थे, तो ऐसे प्रभु रामचंद्र थे। लेकिन रावण क्या करता, उनके सोल्जर्स को समंदर में फेंक देता था। तो प्रभु जी बोलते कि रावण स्टार्टेड द यूज एंड थ्रो कल्चर, यूज एंड थ्रो, उनको फेंक देता था तो इसके बारे में शिक्षाशास्त्र में प्रभु बता रहे थे कि कैसे कारगिल युद्ध में, इंडिया पाकिस्तान का 99 में जो युद्ध हुआ था, उसमें जब युद्ध के पश्चात जब भारत विजय हुआ तो ऑफिशियली डिक्लेयर करना होता है कि कितने सोल्जर्स मरे दोनों साइड से, तो भारत ने डिक्लेयर किया हमारे कुछ तो 400 सोल्जर्स मरे, पाकिस्तान ने बोला हमारे 200 ही मरे 200 भारत को पता था कि ज्यादा मरे, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया 200 ही मरे, तुम्हारे 400 मरे हमारे 200 ही। लेकिन हुआ क्या था, भारतीयों इंडियन आर्मी ने कैलकुलेट किया था, उनके 2500 सोल्जर मरे थे, 2,500, और उधर का जो प्रेसिडेंट था ही डिडंट वांट टू क्लेम देयर बॉडीज, क्योंकि बॉडी क्लेम करेंगे तो काउंट आ जाएगा ना, तो बोले हे हमारे सोल्जर है ही नहीं वो, तो उनको डिस्क्लेम किया। तो जो पाकिस्तान के जो उनके रिलेटिव्स थे जो सोल्जर्स के, वो पूछ रहे थे अरे हमको उनके शव चाहिए, हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे, उनको सोल्जर्स के शव चाहिए हमें उनका फाइनल राइट्स करने के लिए। वो बोले मुझे पता नहीं हमारे इतने ही सोल्जर्स मरे, सो 2,500 सोल्जर्स जो मरे थे पाकिस्तान के वो। तो फिर इंडियन आर्मी ने फिर क्या किया, दिल्ली से जो मौलवी को जो बुला के उनका फाइनल राइट्स, पाकिस्तानी 2,500 सोल्जर्स का फाइनल राइट्स इंडियंस ने किया। तो इस सेक्शन पर बता रहे थे कि कैसे रावण की परंपरा में उन्होंने यूज एंड थ्रो तो फिर आखिर में तो प्रभु रामचंद्र और रावण का युद्ध होता है, तो उसमें प्रभु रामचंद्र रावण का 100 बार सर कलम करते हैं, उसका 10 सर थे लेकिन हर बार अलग अलग सर आते थे। तो प्रभु रामचंद्र को ये आशा थी कि एटलीस्ट ये नया सर में कुछ तो बुद्धि होगी, ये नए सर से वो एटलीस्ट शरणागत हो जाएगा। सो ही हैड 10 हेड्स बट 0 ब्रेन्स, ऐसे बोलते। सो बार मीन्स लॉर्ड वॉज वेटिंग, अरे अभी तो शरण आएगा, अभी तो शरण आएगा. लेकिन फिर बाद में विभीषण बोलते हैं कि काम नहीं चलने वाला, आप टाइम वेस्ट मत करो, इसको मार दो. फिर तभी वो ब्रह्मास्त्र को बुलाते हैं और आदित्य हृदय मंत्र बोल के वो बांध छोड़ते रावण के हृदय में, और वो सीधा जाके रावण के हृदय में जाके रावण का वध कर देते. बोलो प्रभु रामचंद्र की जाय. तो ये क्या है, रामायण भी अचिंत्य है, कैसे वानरों की जीत हुई जो राक्षस थे बड़े बड़े रावण के, उनके विरुद्ध. तो ऐसे कई सारे अचिंत्य चीजें हैं, तो हमें ये अचिंत्य वर्ड जो है हमारे डिक्शनरी में रखना चाहिए, कि कुछ चीजें हैं जो भागवतम में, कुछ चीजें हैं हमें तुरंत समझ में आएंगी, कुछ चीजें बहुत समय के बाद समझ में आएंगी, और कुछ चीजें जो है कभी समझ में नहीं आएंगी. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.